माधव हॉस्पिटल कंपाउंड में अकेला खड़ा किन्हीं ख्यालों में खोया था। दोपहर बीत गई थी। मैसेज में उसने सुमन को निशा की तबीयत खराब होने के बारे में बताया भी था, पर अब तक उसने झूठे मुंह फोन करके हालचाल तक नहीं पूछा था। उसके लिए जैसे उसका परिवार कोई मायने ही नहीं रखता था, और यहाँ उसके कारण वो अपने परिवार को इतनी तकलीफ दे रहा था। बाप बनकर पाला था उसने अपनी बहनों को, और आज निशा और शिखा को जिस हालत में देखा था उसकी रूह कांप उठी थी, और जमीर ने जाने कितनी ही बार इसे धिक्कारा था कि उसके रहते उसकी बहनों की ये हालत हो गई। उसी लम्हे उसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला ले लिया था, जिससे अभी सभी हैरान थे। माधव बेटा, अब निशा ठीक है, तुम घर लौट जाओ, बहू तुम्हारी राह देख रही होगी। अनुपमा जी के शब्द उसके कानों में पड़े तो चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए। अगर आपकी बहू को मेरी इतनी ही चिंता फिक्र होती तो फोन करके बात कर चुकी होती, पर उसे मेरे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इंतजार तो कभी मेरा हो ही नहीं सकता, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। जब तक मेरी बहन यहाँ है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा तो अंदर चलकर बैठ जा, कुछ खा पी लो, सुबह से अन्न का एक दाना तुमने अपने मुंह में नहीं डाला है। माँ थी वो, बच्चा सुबह से भूखा था तो भला उन्हें चैन कैसे आता। पर माधव ने सपाट चेहरे के साथ इनकार कर दिया। भूख नहीं है मुझे अभी, जब होगी तो खा लूंगा। मेरी चिंता छोड़ दीजिए और शिखा के साथ घर चले जाइए, मैं हूं यहाँ निशा का ख्याल रखने के लिए। अनुपमा जी कुछ देर खामोश रह गईं, शायद कुछ कहना चाहती थीं पर झिझक रही थीं, और ये बात माधव समझ गया था। क्या हुआ मम्मी, अगर कुछ कहना है तो कह दीजिए। बेटा हम बस इतना कह रहे थे कि निशा को डिस्चार्ज मिलने के बाद आप बहू के पास लौट जाइएगा, उन्हें आपका हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा। हम निशा को समझा देंगे और आगे से उनके साथ ही रहेंगे। आप हमारी चिंता छोड़कर बहू की खुशी पर ध्यान दीजिए, आपको अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ बितानी है। माधव जो अब तक रुख फेरे शान सा खड़ा था, उसके चेहरे पर रोष के भाव उभर आए और वो झटके से उनकी ओर पलट गया। आपको मालूम भी है मम्मी कि आप क्या कह रही हैं, अंदाजा भी है कि कैसी अनहोनी होते होते बची है, निशा कितना डर गई है इस वाक्य से। इतना सब देखने सुनने के बाद भी आप मुझे वापस वहां भेजना चाहती हैं, चाहती हैं कि अपनी बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूं और आपकी बहू का ख्याल रखूं, उसी बहू का जैसे मेरा और मेरी भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं। आपकी बहू की खुशी के लिए ही आपके कहने पर मैं घर छोड़कर गया था, और उसका अंजाम आपके सामने है। अब क्या चाहती हैं आप मुझसे, कि आपकी बहू के लिए क्या अपनी बहनों की जिंदगी तबाह होने दूं, उनकी इज्जत पर आंच आने दूं, सब जानकर भी अनजान बन जाऊं, उनके विश्वास को तोड़ दूं। सॉरी माँ, पर अब मुझसे ऐसा नहीं होगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, पर अब मैं अपनी बहनों के साथ ही रहूंगा, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माधव ने गुस्से में अपना फैसला सुनाया और जैसे ही अंदर आने के लिए कदम बढ़ाए, सामने खड़ी शिखा को देखकर उसके कदम ठिठक गए। शिखा फ्यांसुओं से भरी आंखें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी कि वो सारी बातें सुन चुकी है। अब तू क्यों रोने लगी पगली, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अब तुम्हें छोड़कर। माधव ने उसके पास आकर बड़े ही प्यार से उसके आंसू पोंछ दिए। शिखा नम आंखों से उसे देखने लगी। पर भाभी, मेरी बहनों से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई भी नहीं, इतना ही कहा था माधव ने और शिखा को अपने सीने से लगा लिया था। अनुपमा जी चेहरे पर विवशता के भाव लिए अपने बच्चों को सुनी निगाहों से देख रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर अपनी बुरी नजर डालने की, मेरे घर आकर उसके साथ बदतमीजी करने की? क्या सोचा था तूने कि मर गया है उसका भाई, जो उसके साथ कुछ भी करेगा और कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे? गुस्से से गरजते हुए माधव ने संजू को दो चार घूंसे जड़ दिए और इतने में ही उसकी हालत पस्त हो गई। पर माधव आज गुस्से में महादेव का रौद्र रूप धारण कर चुका था। इस बार तो बस वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, पर याद रहे, अगर दोबारा तूने मेरी बहनों पर अपनी बुरी नजर डाली या उनके आसपास भी नजर आया, तो उनका भाई वो हश्र करेगा तेरा कि सारी जिंदगी दोबारा कभी किसी की बहन की ओर अपनी घटिया नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। पुलिस कंप्लेन तो कर ही चुका हूँ तेरी, इस बार तो बस आगाह करके छोड़ने दिया है तुझे। पर दोबारा अगर तेरे जहन में मेरी बहनों का ख्याल भी आया तो जेल की सलाखों के पीछे होगा तू, और ऐसी हड्डी पसली तुड़वाऊंगा तेरी कि दोबारा अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकेगा। इसे चेतावनी नहीं, धमकी ही समझ और दूर रह मेरे परिवार से। अपनी बहनों में जान बसती है मेरी, और उन पर बुरी नजर डालने वालों की जान तक ले सकता हूँ मैं। उसका गुस्से से कांपता वजूद और फौलादी हाथ से पड़े घूंसे, संजू की सारी आशिकी और दबंगई निकल गई थी और उसके पैर पकड़कर उसने माफी मांगी थी। माधव हॉस्पिटल से आते ही सबसे पहले यही काम निपटाने आया था, ताकि उसकी बहन पर मंडराता खतरा टल जाए, और साथ ही उसने ये मोहल्ला छोड़ने का फैसला भी कर लिया था, क्योंकि वो किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस हादसे को महीने से ऊपर का वक्त हो गया था। माधव दोबारा लौटकर अपार्टमेंट में सुमन के पास नहीं गया था। उसे कई बार फोन किया पर उसने कॉल रिसीव नहीं की। माधव ने उसे सारी स्थिति मैसेज करके समझाई और घर बदलने के बारे में भी बताया, पर मैसेज पढ़ने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अपनी तरफ से उसने यहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर सुमन ने जैसे उससे सभी कनेक्शन ही तोड़ दिए थे। और उस रिश्ते की वो नाजुक डोर उस दिन माधव के हाथों से भी छूट गई, जिस दिन सुबह सुबह बिना बताए ही सुमन उनके नए घर चली आई थी। सब उसे वहां देखकर हैरान भी थे और खुश भी, पर माधव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, और सुमन, वो वो तो फुल एटीट्यूड में जमीन को अपने हील्स के नीचे रौंदते हुए माधव के ठीक सामने आ खड़ी हुई थी। उसने अपनी आंखों पर से बड़े ही स्टाइल से गॉगल्स हटाए, तिरछी मुस्कान के साथ अजीब निगाहों से माधव को ऊपर से नीचे तक देखा। यू नो व्हाट, मैंने कहीं पढ़ा था कि शेर की खाल पहन लेने से गिद्ध शेर नहीं बन जाता। कुत्ते की पूंछ को कितनी ही सालों नली में रख लो पर वो सीधी नहीं होती, और गरीब छोटे लोगों को कितना ही पैसा और इज्जत दे दो, वो गरीब के गरीब ही रहते हैं। उनकी सोच उन्हीं की तरह छोटी रहती है, और वो इतने सेंटिमेंटल होते हैं कि अपनी किस्मत को खुद ठुकरा कर उसी गरीबी में मर जाते हैं। पहले मुझे लगा था कि तुम ऐसे नहीं हो, मैं तुम्हें बदल दूंगी, पर नहीं, तुम भी उन्हीं गरीबों में से हो। मैं किस्मत बनकर तुम्हारे पास आई थी, तुम्हें इस छोटे से घर से निकालकर अपने आलीशान अपार्टमेंट में ले गई थी। एक ऐशो आराम से भरी जिंदगी थी, अपने जैसे हाई प्रोफाइल और हाई सोसाइटी के साथ उठने बैठने के काबिल बनाया तुम्हें। पर देखो आज फिर तुम अपने इस दो रूम के छोटे से घर में खड़े हो, वहीं फटीचर साल में जैसे पहले हुआ करते थे। यही औकात है तुम्हारी, और ऐसी ही जिंदगी डिजर्व करते हो तुम। मैंने तो बेवजह ही तुम पर अपना इतना वक्त और एफर्ट्स बर्बाद कर दिया, बहुत ज्यादा और ऊंची एक्सपेक्टेशंस रख लिए तुमसे। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों हमेशा साथ और खुश रहेंगे, पर जिस पल तुम मुझे छोड़कर अपने इस लो क्लास फटीचर फैमिली के पास आए, मुझे उसी पल एहसास हो गया कि मैं गलत थी। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, तुम मेरे लायक ही नहीं थे, तुम मेरे जैसी लड़की डिजर्व ही नहीं करते थे। मैं कभी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती। बस मुझे ये बातें समझने में बहुत वक्त लग गया कि मैं तुम्हारी औकात से बाहर की चीज हूँ। जब किसी भिखारी के हाथ हीरा लगता है तो वो ऐसे ही उसकी कदर नहीं करता, उसे पत्थर समझकर ठुकरा देता है, जबकि वो डायमंड उसकी जिंदगी बदल सकता था।
वैसे ही तुम्हें कभी मेरी कदर नहीं हुई, तुमने हर बार अपनी फैमिली के लिए मुझे ठुकराया। तो जाओ तुम अपनी फैमिली के पास, मुझे अब तुम्हारे से किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना। रहो तुम अपने इस झोपड़ी जैसे घर में, मैं डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी तुम्हें, उसके बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जहां बाकी सब सुमन का ये अंदाज और फैसला सुनकर शॉक्ड रह गए थे, वहीं माधव अब भी एकदम शांत था। शायद उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। सुमन, बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मैं आपको डिजर्व नहीं करता। मैं तो कभी से आपके लायक ही नहीं था। मैं जानता था कि मैं कितना ही कुछ भी करूं पर कभी आपको खुश नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझसे आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। फिर भी अब तक मैंने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब मेरे लिए भी ये मुमकिन नहीं। आपने ठीक कहा कि मैंने आपको छोड़कर अपने परिवार को चुना है। आपके लिए उन्हें छोड़कर आपको भी चुना था मैंने, और उसकी वजह से जो मेरी बहनों ने सहा, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता। आपको तो अपनी उम्मीदों के मुताबिक कोई दूसरा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, पर मेरी माँ को दूसरा बेटा और बहनों को दूसरा भाई नहीं मिल सकता। आप यहाँ रह नहीं सकती, और अब मैं आपके लिए अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकता। हमारा साथ रहना अब मुमकिन ही नहीं, इसलिए इन परिस्थितियों में यही सही फैसला है कि हम अलग हो जाएं। माधव की बातों से तो यही लग रहा था कि वो पहले से ही ये फैसला कर चुका था। माधव तो अब भी शांत और गंभीर लग रहा था, जबकि सुमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अच्छी बात है कि तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि अब हमारा साथ रहना पॉसिबल नहीं। मैं यही बताने आई थी तुम्हें, और जब तुम्हें भी मेरे फैसले से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो जब डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे पास आएं तो उस पर साइन कर देना। अब मुलाकात सीधे कोर्ट में होगी। इतना कहकर वो जिस एटीट्यूड के साथ आई थी उसी के साथ वापस जाने लगी, पर कुछ कदम चलकर वो ठहर गई और वापस माधव की ओर पलट गई। ओह, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गई कि मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर तुम तब तक मुझे छोड़कर जा चुके थे और मैंने फैसला ले लिया था कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जब मैं रिश्ता ही खत्म करने वाली थी तो उसकी निशानी अपने पास क्यों रखती, इसलिए मैंने अबॉर्शन करवा लिया। पर क्योंकि बदकिस्मती से तुम उस बच्चे के बाप थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता देना चाहिए। सुमन ने इतनी सहजता से इतनी बड़ी बात कह दी कि बाकी सब शॉक्ड रह गए। उन्हें सदमे की स्थिति में छोड़कर सुमन कुटिलता से मुस्कुराई और आंखों पर शेड्स लगाते हुए वहां से चली गई। बच्चा, माधव के होंठ फड़फड़ाए और आंखें छलक गईं। उसकी इस हरकत ने साफ जाहिर कर दिया था कि उसे माधव से कभी प्यार था ही नहीं। माधव उसके लिए उस चीज जैसा था जो उसे एक नज़र देखते ही पसंद आ गया, और उसने उसे अपना बनाने का फैसला कर लिया। माधव उसकी जिद बना, और उसको हासिल करके उसने अपनी जिद पूरी की। वो उसकी जीत की ट्रॉफी बन गया था, जिसे वो जितना अपने पास देखती है उतनी ही संतुष्ट हो जाती थी। अब ये खिलौना उसके इशारों पर नहीं चल रहा था, और इससे खेलने में अब वो मज़ा भी नहीं था। वो बोर हो गई थी माधव से, तो उसने उसे छोड़ने में भी एक पल का वक्त नहीं लगाया था। यहां तक कि उसने बिना माधव को बताए उसके बच्चे को अबॉर्ट भी करवा दिया था, पर उसे कोई पछतावा नहीं था। टू बी कंटिन्यूड।